फिर खुदावन ने मूसा से कहा, पहली लोहों की माने पत्थर की दो लोहें अपने लिए तराश लेना और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरहूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कुह सीना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियाँ और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने न पाए और मूसा ने पहली लोहों की माने पत्थर की दो लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावन के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावन अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावन के नाम का इनाम दिया और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और चक्कर और वफा में गलन, हजारों पर फसल करने वाला, गुनाह और तकदीर और फता को बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हर चीज बरी नहीं करेगा बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिज्दा किया और कहा, ऐ खुदावन अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल, वो ये कौम गर्दन करता है और तू हमारे गुनाह और सताह को मुआफ कर और हमको अपनी निराश कर। उसने कहा, देख मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूँगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावन के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो हैबतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तू उसे याद रखना, देख मैं अमूरियों और किनानियों और बिजनों और सिरसियों और हबियों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ, तो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बासिंदों से कोई अहद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए ठंडा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गहों को उठा देना और उनके ससूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी जसीरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की परस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावन जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। तो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बसिंदों से कोई अहद बांधे और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरे और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करे और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरे और तेरे बेटों को भी अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार बना दे, तू अपने लिए ढाले हुए देवता न बना लेना, तू देख मेरी रोटी की ईद माना करना, मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अदैस के महीने में वक्त मुईना पर देख मेरी रोटियां खाना, क्योंकि माहे अदैस में तू मिस्र से निकला था, तब तक रोटे मेरे हैं और तेरे सिपाहियों में जो नर कहलौते हैं क्या बछड़े क्या बर्रे सब मेरे होंगे, लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बर्रा देकर होगा और अगर तू फिदिया देना ना कहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब कहलौते बेटों का फिदिया जरूर देना और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। 6 दिन काम काज करना लेकिन 7वें दिन आराम करना, हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना और तू जीवों के पहले फल के काटने के वक्त फसलों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदावन खुदा के आगे जो इसराइल का खुदा है हाजिर हो, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकाल कर تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا، اور جب سال میں 3 بار تو خداوند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا۔ تو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزرانا، اور عید فصح کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا، حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ ان ہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ تو 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اور جب موسیٰ شہادت کے دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر دی اور اس کے چہرہ کو چمک سے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا، اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتایا۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا، اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا، اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرہ کی جیل چمک رہی ہے۔ اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔